जय माँ। सावित्री यज्ञ में आगे बढ़ेंगे। प्रतीकात्मक उषा, उषा प्रतीक है इस बात का कि अंधकार कितना भी घना गहरा क्यों ना हो, पर अंततः प्रकाश की विजय होती है। प्रकाश ये जो अब लोग कई बार पूछते हैं, लेकिन रात तो फिर आती है, लेकिन एक घटना होती है दिन और रात के बीच में, जैसे काल की गति आगे बढ़ती है, एक प्रगति का अवसर मिलता है। जो हम प्रगति करते हैं ना एक पूरे दिन में, रात को हम सो के उसको एसिमिलेट करते हैं। तो ये है उषा काल, और पिछली बार हम लोग यहाँ पर रुके थे, एंड लॉन्ग टू रीच इट्स एंड इन वेकेंट नॉट। तो ये दो शक्तियाँ एक साथ कार्य करती हैं। एक जो उषा काल के आगमन से हमको कर्म प्रवृत्त करती हैं, जो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, उसको अलग अलग तरह से लोग समझते हैं, वो बाद में आएगा इसमें वर्णन। और दूसरी जो हमको वापस निद्रा, अलस, तमस की ओर खींचती है। यही दोनों सदैव मनुष्य के ऊपर उसके अल्टीमेट प्रोग्रेस तक कार्यरत होती हैं। एक जो हमको प्रगति की ओर ले जाती है, अग्नि जो हर चीज को शुद्ध करती है, ऊपर उठाती है, और दूसरा वो अंधकार जो पीछे खींचता रहता है कई तरीकों से, कई उपाय से। अब आगे, एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स ए म्यूट featureless semblance of the unknown, repeating forever the unconscious act, prolonging forever the unseen will, cradle the cosmic drowse of ignorant force, whose moved creative slumber kindles the suns and carries our lives in its somnambulist whirl, dark beginning। अंधकार से यात्रा प्रारंभ होती है, अचित से प्रारंभ होती है। घबराना नहीं चाहिए, सब अगर व्यक्ति खो दे तो कहना चाहिए इट्स ए न्यू बिगिनिंग, सो डार्क बिगिनिंग। दूसरी चीज है यहां पर म्यूट फीचरलेस सेम्बलेंस ऑफ द अननोन। प्रारंभ में पता नहीं होता हम किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। कई बार लोग ये प्रश्न में उलझे रहते हैं, ये करूं या वो करूं। करो जो उचित लगे उस समय करो, जैसे जैसे करोगे साधन भी बढ़ेंगे, मार्ग भी प्रशस्त होगा। नहीं करोगे तो वैसा ही की वैसी अवस्था रहेगी। तो यहां पर म्यूट फीचरलेस सेम्ब्लेंस ऑफ द अननोन। यहां वो क्यों कह रहे हैं सेम्ब्लेंस, ऐसा प्रतीत होता है कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसी अननोन के अंदर ज्ञान छिपा है। जैसे जैसे हम जागेंगे प्रकाश बढ़ेगा। रिपीटिंग फॉर एवर द अनकॉन्शियस एक्ट, प्रोलोंगिंग फॉर एवर द अनसीइंग विल। जब प्रथम जागरण होता है तो जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो पहले मैकेनिकल एक्टिविटीज उसमें व्यक्ति लग जाता है, तो वैसे ही मनुष्यों के अंदर जो कई सालों से वर्षों से पुरखे जो करते आए वही मैकेनिकल रूटीन में जीवन चलता रहता है। प्रारंभ में अचित के बेड़ियों के अंदर चलता रहता है। तो अचित अंधकार से प्रकाश की यात्रा एक लीप में नहीं होती है, छलांग नहीं लगाते हैं, उसके लिए सेतु बंद से स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। और पहला स्टेप है अज्ञान का जन्म, अचित। अचित जिसके अंदर सब कुछ महाशून्य है लेकिन छाया है वो भगवान की, उसके अंदर कोई स्टर नहीं है, उसके अंदर अज्ञान का पहले जन्म होता है। अज्ञान का मतलब है पार्शियल नॉलेज, कहीं कोई एक भाव हो रहा है कि कुछ ज्ञान कहीं छिपा है। प्रोलोंगिंग फॉर एवर द अनसीइंग विल, क्रेडल द कॉस्मिक ड्राउज ऑफ इग्नोरेंट फोर्स। अब यहां जड़ प्रकृति का वर्णन है। जड़ प्रकृति अपनी मैकेनिकल गति में चलती चली जा रही है, जैसे किसी पाश में बंधी हुई उसको मालूम नहीं क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, कोई गंतव्य है कि नहीं। तो जब हम लोग जड़ प्रकृति के अधीन होते हैं तो हमारी भी यही अवस्था होती है। सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, चूंकि ऐसा होता है इसलिए हम वो कर रहे हैं। तो प्रारंभ में यही होता है, लेकिन इस जड़ प्रकृति के अंदर भी एक ज्ञान छिपा है, उसके अंदर भी एक महासूर्य छिपा है। और यहां वो भाव आ रहा है, क्रेडिल द कॉस्मिक ड्राउज ऑफ इग्नोरेंट फोर्स। पूरी सृष्टि के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ जैसे सुप्त अवस्था में है, तमस आच्छन्न है, लेकिन हुज मूव्ड क्रिएटिव स्लंबर किंडल्स द सन्स। ये जड़ तत्व घूमता 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 उसी के अंदर से ऊर्जा प्रकट होती है। न जाने कितने कितने सूर्य प्रकट होने लगते हैं ब्रह्मांड में। अगर हम उत्पत्ति को देखें तो इसी प्रकार से उत्पत्ति है, वो ट्रेमेंडस विस्फोट जो होता है ऊर्जा का, और धीरे धीरे वो घनीभूत होती है, फिर उसके अंदर से अनेकों सूर्य जन्म लेते हैं। जड़ तत्व की बात हो रही है, एंड कैरीज अवर लाइव्स इन इट्स सोमनेम्बुलिस्ट वर्ल्ड। सोमनेम्बुलिस्ट, निद्रा में चलना। तो जग के भी हम लोग ऐसे चलते हैं जीवन में जैसे हम निद्रा में, निद्रा में मतलब कि हमको पता नहीं कि हमारा दूरगामी लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए। हम बस रोज का जीवन, सुबह उठे, भोजन, सो गए, रोज के काम किए, ऑफिस चले गए, ड्यूटी की, ये सब वो जीवन है, अनकॉन्शियस जीवन है। लेकिन इसी अनकॉन्शियस जीवन को जीते जीते यहां पर है कि हुज मूव्ड क्रिएटिव स्लंबर, उसके अंदर एक प्रचंड ऊर्जा सोई हुई है या जागी हुई इस इग्नोरेंट फोर्स के पीछे। इग्नोरेंट फोर्स कौन सी है? जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति के पीछे साक्षात परा प्रकृति खड़ी है। तो वो इस निद्रा के अंदर से जिसमें हम चल रहे हैं, अचानक कहीं सूर्य की किरण प्रकट हो जाती है जब उसका समय आता है। तो इसका वर्णन है, जो प्रारंभिक जागरण होता है ऐसा ही होता है, योग में भी ऐसे ही जागरण होता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में हम सब जान लें कैसे करना है, क्या ध्यान करना है, कैसे जीवन जीना है, कहाँ पहुँचना है। हमें जो जितना समझ आ रहा है उतना हम करें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रास्ता खुलता जाएगा। यही चीज योग में भी अप्लाई करती है। Athwart the vain enormous trance of space, enormous trance, ये एक trance कौन सा है? एक अचित अचेतन का भी कि भी एक समाधिस्थ अवस्था है। समाधि जिसके अंदर trance, जिसके अंदर कुछ भी हिल नहीं रहा है, कुछ भी स्पंदन नहीं है, उसको कहते हैं निर्विकल समाधि। एक वो है जिसमें आप सुपर कॉन्शियस चले गए। एनॉर्मस ट्रांस ऑफ स्पेस, तो ये पूरा जो स्पेस है दिक दिख पाल, ये क्या है? ये एक ट्रांस की अवस्था में है। जो शिव हैं वो इसके अंदर लीन हो गए, देव इसके अंदर सो गए हैं, यही प्रथम अवतार का वर्णन है। इसके अंदर सो रहे हैं, अब वो धीरे धीरे जागेंगे, जैसे जैसे जागेंगे विकास होगा। एथॉट, थॉट को हम अक्रॉस शब्द से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। थॉट द वेन, वेन क्यों? ऐसा प्रतीत होता है। थॉट द वेन एनॉर्मस ट्रांस ऑफ स्पेस, इट्स फॉर्मलेस स्टूपर विदाउट माइंड और लाइफ। स्टूपर, स्तब्ध अवस्था जिसमें मन नहीं है, ध्येय नहीं है, जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, मेटीरियल वर्ल्ड, जड़ जगत की अवस्था का वर्णन है। ए शैडो स्पिनिंग थ्रू ए सोललेस वॉइड, थ्रोन बैक वंस मोर इनटू अनथिंकिंग ड्रीम्स। अर्थ व्हील्ड अबैंडन्ड इन द हॉलो गल्फ्स। अब देखिए धरती का चित्रण है कि निश्चेतना में डूबा हुआ जड़ जगत, स्पेस, आकाश तत्व पूरा विस्तार उसका, और उसमें पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों तरफ, लगाती चली जा रही है बिलियंस ऑफ ईयर्स, उसको नहीं मालूम क्यों, लेकिन उसके अंदर एक प्रयोजन है। पर यदि कोई उस क्षण को देखे तो ऐसा लगता है ये बिना प्रयोजन के ये लगाती चली जा रही है। अर्थ व्हील्ड अबैंडन्ड, न मन है न प्राण है न जीवन है उसके अंदर, जड़ तत्व है, मानो किसी ने उसको फेंक दिया हो। अबैंडन्ड, कोई उसका रखवाला ना हो, अनाथ हो, ये सब प्रतीति होती है। लेकिन इसका जो सत्य है वो कुछ पंक्तियों के बाद आएगा। फॉरगेटफुल ऑफ हर स्पिरिट एंड हर फेट, यहां शब्द हैं, वो सोल को नहीं जानती, सोललेस वॉइड, अपने ही सत्य से अपरिचित है। फॉरगेटफुल ऑफ हर स्पिरिट, अपने ही भाग्य से अपरिचित है। पृथ्वी के ऊपर भगवान आते हैं, आप कल्पना कीजिए, कभी आप नहीं पढ़ेंगे कि भगवान स्वर्ग लोक गए। स्वर्ग से लोग जाते हैं भगवान के पास रिक्वेस्ट करने। पृथ्वी के यूनिक चीज है, क्या फेट लेके आई है धरती मां। तो फॉरगेटफुल ऑफ अ स्पिरिट एंड हर फेट। द इम्पैसिव स्काइज वेर न्यूट्रल एम्प्टी स्टिल, यही बिगनिंग है, डार्क बिगनिंग, जिसमें लोग मनुष्य जड़वत पाषाणवत जैसे किसी एक रूटीन से बंधा हुआ क्रियाएं करता रहता है, जिसका ना उस जिसके अंदर ना कोई विचार है ना प्रॉपरली, वो ठीक है जीवन है मनुष्य के अंदर, लेकिन वो बस एक मैकेनिकल कोलू के बैल की तरह हम लोग कहते हैं ना, पिसता रहता है। उससे कोई पूछे क्या लक्ष्य है तो कोई लक्ष्य नहीं, इम्पैसिव स्काई। देवता हैं कहीं, कौन जाने, इम्पैसिव स्काइज ऐसा प्रतीत होता है। वे आर न्यूट्रल, न्यूट्रल क्यों, आपके सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है। आप जीवर के रो लीजिए, आप कितने भी खुश हो जाइए, आकाश के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। द इम्पैसिव स्काइज वे न्यूट्रल एम्प्टी स्टिल, एक खालीपन का बोध, एक स्थिर बस। तो यहां पर इसका वर्णन है बिगिनिंग का। देन समथिंग इन द इनस्क्रूटेबल डार्कनेस स्टर्ड, ए नेमलेस मूवमेंट, एन अनथॉट आइडिया, इंसिस्टेंट, डिससेटिस्फाइड, विदाउट ए नेम, समथिंग दैट विश्ड बट न्यू नॉट हाउ टू बी, टीज्ड द इनकॉन्शियंट टू वेक इग्नोरेंस। लेकिन कुछ छिपा था इस महाअंधकार के अंदर, निश्चेतना के अंदर। तो अब क्या होता है, कोई चीज जो अंदर छिपी थी वो स्टर करती है, बेचैनी सी एक अनुभव होती है, एक रेस्टलेसनेस होती है, एक असंतोष। किस बात का असंतोष है मालूम नहीं है, असंतोष है ये शब्द भी नहीं प्रयोग कर सकते, लेकिन कोई स्टर होती है। जैसे सारे प्राणी जब जागते हैं ना सुबह सुबह, तो उनका शरीर ही उनको उठा देगा, और कुछ नहीं, विसर्जन के लिए मलमूत्र विसर्जन, भोजन, ये कोई चीज है जो असंतोष के रूप में, हंगर के रूप में जागती है, डिजायर के रूप में जागती है। किस चीज की डिजायर है मालूम नहीं, भूख के रूप में जागती है, हंगर दैट इज डेथ, और वो इनकॉन्शियंट को जगाती है। और यही इसलिए ये आवश्यक है क्योंकि उस अचित अंधकार को जगाने के लिए प्रथम जो चीज होती है वो यही होती है, एक स्ट्रांग स्टिमुलस। तो वो जागती है लेकिन वो समझ नहीं पाती कि मुझे क्या चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, रोते हैं, माँ दूध पिलाती है, चुप हो जाते हैं, बच्चे को नहीं मालूम उसको क्या चाहिए। ए नेमलेस मूवमेंट एंड अनथॉट आइडिया। नेमलेस इसलिए क्योंकि आप उसको कह नहीं सकते कि इसलिए ये किया जा रहा है। इंसिस्टेंट, डिससेटिस्फाइड, विदाउट ए नेम। अब देखिए कितने लेवल पर ये ऑपरेट करती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है, असंतोष होता है, पता नहीं क्यों असंतोष हो रहा है। ये असंतोष अल्टीमेटली आपको दिव्य के चरणों में जाके ही, भगवान के चरणों में जाके ही शांत होगा, लेकिन ये पता नहीं होता। वो डिजायर का रूप लेता है, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, लेकिन क्या चाहिए यह नहीं मालूम। जो दिख जाए, जो मिल जाए, बच्चे होते हैं ना जब मेले से गुजरते हैं तो उनको ये नहीं पता है कि उनको क्यों मेला जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है, तो क्या करता है बच्चा अचानक कोई चीज़ मुझे ये है खिलौना चाहिए, उसको पता नहीं है खिलौने से क्या करेगा, वो दो मिनट खेल के तोड़ देगा। पिता उसको समझा रहे हैं, रोने लगता है, फिर खरीद देते हैं, थोड़ी दूर जाता है, मुझे यहाँ ये चाहिए, मुझे वह चाहिए। यही अवस्था होती मनुष्य की प्रारंभ में, तो सृष्टि की यह प्रारंभिक अवस्था का वर्णन है। लेकिन उससे क्या होता है, उसका भी एक प्रयोजन है। समथिंग दैट विश्ड बट न्यू नॉट हाउ टू बी टीज्ड द इनकॉन्शियंट टू वेक इग्नोरेंस। अचित अंधकार के अंदर से अज्ञान, अज्ञान क्या, अज्ञान के अंदर एक सीकिंग है ज्ञान की ओर। अब खिलौना तो ले लिया, उसको पता नहीं क्यों ले रहा है, लेने के बाद उसको तोड़ मरोड़ रहा है, खोल रहा है, देख रहा है, समझने की चेष्टा कर रहा है। टीज द इनकॉन्शियंट अवेक इग्नोरेंस। ए थ्रो दैट केम एंड लेफ्ट ए क्विवरिंग ट्रेस। एक ऐसा लगता है कोई झटका सा प्रतीत हुआ, एक स्पंदन आया जिसने कहीं ना कहीं हर चीज के अंदर एक असंतोष जगा दिया। स्पंदन कहां से आया यहां ये नहीं बताया जा रहा है, वो बाद में बताया जाएगा। कोई चीज है जो जगा दिया, लेकिन जगाने के बाद आपके अंदर भूख प्यास मांग कामनाएं जग गई। कौन था जो ये जगा के चला गया? ए थ्रो दैट केम एंड लेफ्ट क्विवरिंग ट्रेस। तो आके स्पर्श करके चली गई। इसीलिए भगवान का जिसको स्पर्श मिल जाता है उसका जीवन तब तक असंतोष से भरा रहेगा जब तक पूरे के पूरे भगवान की शरण नहीं मिल जाती। वो असंतोष का अपना एक प्रयोजन है। गेव रूम फॉर एन ओल्ड टायर्ड वांट अनफिल्ड एट पीस इन इट्स सबकॉन्शियंट मूनलेस केव टू रेज इट्स हेड एंड लुक फॉर एब्सेंट लाइट। Straining closed eyes of vanished memory, like one who searches for a bygone self and only meets the corpse of his desire. अब next step क्या होता है? भूख जग गई, कामना जग गई, किस चीज के लिए? बड़ी सुंदर कहानी है कृष्ण जी की, उसको भजन के रूप में हम मूनलेस केव की है ना। माँ यशोदा से कहते हैं मुझे खिलौना चाहिए, तो इधर उधर अनेकों खिलौने ये सब नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए मुझे? तो वो चाहिए जो आसमान में चंद्रमा चाहिए। मून क्या है? सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल लाइट। अब माँ यशोदा क्या करेंगी, वो चंद्रमा लाके कैसे देंगी? बहुत समझाती हैं, बिलक बिलक के रोने लगते हैं। सो बहुत सुंदर भजन है, का ना मांगे मात यशोदा, का ना मांगे मांग खिलौना मात यशोदा से। तो वो क्या करती हैं, एक थाली लेती हैं, उसके अंदर पानी डालती हैं। अब पानी में जब रिफ्लेक्ट होता है मून, तो कहती देखो ये तेरा चंद्रमा ले आई मैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मिस्टिक स्टोरी है, पर प्रारंभ में जो होता है व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसको क्या चाहिए। आप देखें कई बार यंग एज में यू डोंट नो व्हाट यू वांट, गो थ्रू इट, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, कॉन्शियसनेस ग्रो करती है। नहीं तो अगर स्टाइफिल रहता है तो बस सोचती रहता है, ओल्ड टायर्ड वांट अनफिल्ड, कोई चीज अंदर में कहती नहीं इससे मन नहीं भरेगा, फिर कोई चीज कहती नहीं पकड़ लो ले लो। ये प्रारंभिक अवस्था है। तो इस तरह से जागरण शुरू होता है ज्ञान का, और फिर वहां उसका वर्णन है किस चीज की भूख है अंधकार को, प्रकाश की। तो प्रकाश तो मिल नहीं रहा है, एब्सेंट लाइट। तो जो उसके हाथ में मिल रहा है बच्चे को संबल के रूप में माता पिता वही पकड़ लेता है, उसको लगता है कि ये ही भगवान है। कुछ समय बाद पता चलता है ये भगवान नहीं है, फिर किसी मित्र को, पति को, पत्नी को, अंत में पता चलता है वैसे तो भगवान सबके अंदर है लेकिन भगवान भगवान भी है। तो ये प्रोसेस है एक विकास की, एब्सेंट लाइट एट पीस इन इट्स सबकॉन्शियंट मूनलेस केव टू रेज इट्स हेड एंड लुक फॉर एब्सेंट लाइट। तो जैसी सृष्टि प्रारंभ होती है ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। डेथ इसीलिए लास्ट में कहती है सावित्री को कि सारी समस्या आपकी है, आराम से मैं सो रहा था, सृष्टि सो रही थी चिर निद्रा में, आपने क्यों जगाया। बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार की निद्रा में जीवन जीते हैं, खुश हैं अपनी अपनी सीमा में, पर कोई चीज है जो ढूंढती है, जैसे कोई आइडियल की एक चाह आ गई, परफेक्शन की चाह आ गई, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं। तो एब्सेंट लाइट, एब्सेंट के यहां दो भाव है, एक तो सूर्य का उदय नहीं हुआ है, चंद्रमा भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एब्सेंट का मतलब कि वो कभी था। आपको एक भाव है कि वो कहीं तो है, नहीं तो आप क्यों ढूंढोगे। तो वो सबकॉन्शियंट अवचेतन के अंदर से जब जागता है तो ढूंढता है। भगवान है इसका प्रमाण क्या है, इंट्यूटिव सेंस है ये कि है, तभी मनुष्य ढूंढ रहा है, आज से थोड़ी ढूंढ रहा है, जब से मनुष्य आया है ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है, कहीं पर उसको एक इंट्यूटिव सेंस और फेथ है। स्ट्रेनिंग क्लोज्ड आईज ऑफ वैनिश्ड मेमोरी लाइक वन हु सर्चेस फॉर ए बाईगॉन सेल्फ एंड ओनली मीट्स द कॉर्प्स ऑफ हिज डिजायर। ढूंढ रहा है लेकिन सब जगह वो अपने शत विक्षत शव जैसे पड़े होते हैं। तो यहां पर वो अनेकों अनेकों रात और दिन की साइकिल है, प्रलय के बाद ये सारे भाव एक साथ हैं कि विफल प्रयास, कई विफल प्रयासों के बाद एक सफल प्रयास होता है। तो वो सारी भाव एक साथ इसमें जुड़े हुए हैं प्रतीकात्मक उषा में। इट वॉज एज दो इवन इन दिस नॉट्स प्रोफाउंड, even in this ultimate dissolution's core, there lurked an unremembering entity, survivor of a slain and buried past, condemned to resume the effort and the pang, reviving in another frustrate world. तो कोई भी चीज बाहर से फॉर्म समाप्त हो जाता है लेकिन उसका जो मूल तत्व है, उसकी जो वैल्यू है, उसका सार है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए जब हम कोई चीज खो देते हैं, कुछ समय दुख होता है, उसके बाद क्या होता है, चेष्टा होती है उसी चीज को पाने की, दूसरे रूप में, तीसरे रूप में, चौथे रूप में, जन्म जन्मांतर कितने रूप में, ये एक प्रोसेस है। धीरे धीरे इसके द्वारा हमारे अंदर इन इल्यूजन से खेलते हुए ज्ञान की वृद्धि होती है, वो एक अलग बात है। परंतु कोई चीज आशा नहीं छोड़ती, अचित अंधकार मतलब कंप्लीट नो होप, लेकिन जैसे ही जागता है व्यक्ति उसके अंदर आशा, नहीं भी मिल रही है वो चीज अनेकों प्रयासों के बाद, फिर भी आशा रहती है, इसीलिए उसके अंदर पीड़ा होती है। जब आशा समाप्त हो जाती है तो फिर एक घोर निराशा, आशा है नहीं मिल रही है तो पीड़ा है, घोर निराशा मतलब अब आपने मान लिया कि ये मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन ये कोई चीज है जो जागती है आशा के रूप में, अनरिमेम्बरिंग एंटिटी, सर्वाइवर ऑफ ए स्लेन एंड बरीड पास्ट, प्रयास हुआ था, विफल हुआ था, लेकिन कोई चीज तो बच गई। वो क्या बच गई, आशा। और जो इस आशा को पकड़ के चलते हैं वही पहुंचते हैं। एक कहानी है एडिसन की कि बहुत प्रयास के बाद वो बल्ब बना, न जाने कितने सौ प्रयासों के बाद। किसी ने कहा इतनी बार आप फेल हुए, कहा नहीं, ये प्रोसीड्योर ही इतने स्टेप्स की थी। हर फेलियर से मैंने कुछ सीखा, हर बार कुछ सीखा, सीखते सीखते अल्टीमेटली मैं यहां पहुंचा हूं। तो कोई चीज है जो सर्वाइव करती है, डिजायर सर्वाइव। इसलिए डिजायर को आप स्ले नहीं कर सकते हो आप डिजायर, क्योंकि वो इन्फिनिट की डिजायर है, उसको आप शांत केवल इन्फिनिट के चरणों में डाल के कर सकते, तब वो शांत हो जाता है। उसको पता है कि जो मैं ढूंढ रहा था, और वो इन्फिनिट के अंदर डिलाइट है, वो ढूंढ रहा है डिलाइट को, लेकिन वो नहीं जानता, प्रयास करता रहता है, वो समाप्त नहीं कर सकते हो, वो उठता रहता है, उठता रहता है, जो गिव अप नहीं करता। यहां शब्द है कंडेम्ड टू रिज्यूम द एफर्ट एंड द पैंग रिवाइविंग इन अनदर फ्रस्ट्रेट वर्ल्ड। अब यहां अनदर ये नहीं किसी और लोक पे, रोज वर्ल्ड एक नई करवट लेता है, बदलता है। यहां अनदर उस सेंस में कि सब चीजें बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, दिन बदल गया है, तारीख बदल गई है, सब आपकी संभावनाएं बदल गई हैं, तो फिर से जागती है शायद इस बार, रिवाइविंग इन अनदर फ्रस्ट्रेट वर्ल्ड। एन अनशेप्ड कॉन्शियसनेस डिजायर्ड लाइट एंड ए ब्लैंक प्रेसियंस यर्न्ड टुवर्ड्स डिस्टेंट चेंज। अनशेप्ड कॉन्शियसनेस ठीक से मूर्त रूप भी नहीं हुई है, हमारी एस्पिरेशन भाव मनोदशा मूर्त रूप नहीं हुई है। हाँ, अनशेप्ड का ही अर्थ है, जड़ जगत तो है लेकिन उसके अंदर किसी जो कोई चीज है जो यर्न कर रही जड़ तत्व के अंदर। इसको बाद में एक जगह श्री अरविंद कहते हैं द गॉड्स ऑफ लाइट लाइफ इम्प्रिजेंट सॉट रिलीज, और इसीलिए उसके अंदर एक रेस्टलेस प्रकंपन हो रहा है जड़ तत्व के अंदर। कोई चीजें जो जैसे जड़ तत्व के बंधन से बाहर निकलना चाहती है, तो ये उसके अंदर चल रहा है अनशेप्ड, लेकिन वो क्या है जड़ तत्व को नहीं पता है, और ये जड़ अवस्था में मनुष्य को नहीं पता है। एन अनशेप्ड कॉन्शियसनेस, मूर्त रूप केवल फिजिकल नहीं होते हैं, थॉट्स फॉर्म्स होते हैं, प्राण के फॉर्म्स होते हैं। जब हम कहते हैं कि हमको यह चाहिए तो वो एक फॉर्म हुआ, और जब हम कहते हैं रेस्टलेस तो हैं पता नहीं किस लिए, तो ये अनफॉर्म्ड हुआ। तो यहां अनशेप्ड कॉन्शियसनेस, लेकिन उसको चाह किसकी है, प्रकाश की है। चाह शुरू से यही है, फ्रीडम लाइट ब्लिस अनमिक्स ट्रूथ इमोर्टैलिटी सेंस ऑफ ए सीक्रेट इमोर्टैलिटी, चाह यही है, लेकिन वो प्रारंभ में नहीं जानती। एंड ए ब्लैंक प्रेसियंस, कितनी सुंदर देखिए जोड़ है शब्दों का, ब्लैंक जहां कुछ नहीं है, प्रेसियंस प्रेसियंस पूर्वाभास एक प्रकार का फेथ है, यर्न्ड टुवर्ड्स डिस्टेंट चेंज, कभी तो होगा बदलेगी चीजें, और वहां से यर्निंग का प्रारंभ होता है, ये है एस्पिरेशन का बर्थ। और ये देखिए ब्लैंक प्रेसियंस, ये पेपर है आपके सामने, आप उसमें भर रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या बनाने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, क्या करेंगे, लेकिन कोई चीज अंदर से प्रेरणा देती है, एक प्रेरणा छिपी होती है, प्रेरणा के रूप में व्यक्ति उसमें प्रारंभ करता है, और वो धीरे धीरे, अगर हम जीवन को देखें कितनी जगह कितने तरह से प्रेरणा आती है, और उसके अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप उसमें फेथ है या प्रेरणा है, दो चीजें हैं। इंट्यूटिव फेथ है कि ये शायद ऐसे चेंज आएगा, और एक प्रेरणा है, और वो प्रेरणा क्या है, अल्टीमेटली अभीप्सा वही है प्रकाश की, अंधकार को प्रकाश की प्यास है, पीड़ा को आनंद की प्यास है। इसीलिए हर बार पीड़ा आती है दिखाने को कि जिसको तुम आनंद समझ रहे थे ना, वो आनंद नहीं है, वो सुख है। फिर आपको लगा आप मुझे आनंद मिल गया, फिर आता है नहीं, तो पीड़ा के द्वार से गुजरना पड़ता है हर बार। तो पीड़ा को प्यास किसकी है, आनंद की, प्रेम की, सौंदर्य की, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अचेतन अचित को प्यास किसकी है, चेतना की, ज्ञान की, सत्य की। फॉल्सहुड को भी वो क्या कर रहा है, सत्य को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहा है, कि कोई कभी तो मुझे पता चल जाए कि रियल चीज क्या है जिससे मैं इसको फाइनल बना सकूं करेक्ट शेप. ट्रुथ को वो तोड़ मरोड़ रहा है, यही फॉल्सहुड है, मिथ्यात्व. मृत्यु को भी किस चीज की प्यास है कि मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ही बुरा है, जीवन आ जाए शाश्वत जीवन, बहुत बुरा काम है बेचारे का. स्कैवेंजर है, स्कैवेंजर है ना, क्योंकि वो सोल को तो मार नहीं सकता है, जो भी सत्य से जुड़ा उसको मार नहीं सकता है. बेचारे का काम क्या है, फॉर्म जो डिस्ट्रॉय होता है उसको हटा देता है, किसी फॉर्म को तोड़ सकता है. तो भी प्रतीक्षारत है कि मेरा भी काम कब इस धरती के ऊपर दिव्य जीवन स्थापित हो, तो मुझे भी अपनी नौकरी से छुट्टी मिले, यही प्यास है. इसी को अब हम लोग एक बार पूरा पढ़ लेंगे फिर रुकेंगे. एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स ए म्यूट फीचरलेस सेम्ब्लेंस ऑफ द अननोन रिपीटिंग फॉर एवर द अनकॉन्शियस एक्ट prolonging forever the unseeing will, cradle the cosmic drowse of ignorant force, whose moved creative slumber kindles the suns, and carries our lives in its somnambulist whirl. Athwart the vain enormous trance of space, its formless stupor without mind or life, a shadow spinning through a soulless void, thrown back once more into unthinking dreams, earth wheeled, abandoned in the hollow gulfs, forgetful of her spirit and her fate, the impassive skies were neutral, empty, still. Then something in the inscrutable darkness stirred, a nameless movement, an unthought idea, insistent, dissatisfied, without a name. Something that wished but knew not how to be, teased the inconscient to wake ignorance. A throw that came and left a quivering trace, gave room for an old, tired want unfilled. Peace in its subconscient moonless cave to raise its head and look for absent light. Straining closed eyes of vanished memory, like one who searches for a bygone self and only meets the corpse of his desire. It was as though even in this noughts profound, even in this ultimate dissolution's core, there lurked an unremembering entity, survivor of a slain and buried past, survivor of a slain and buried past, condemned to resume the effort and the pang, reviving in another frustrate world, an unshaped consciousness, desired light, and a blank prescience yearned towards distant change. Chairman.